ओम शांति। अभी हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला जी उपस्थित है। आप कुरुक्षेत्र से बाबा का विशेष संदेश लेकर के वर्तमान समय अभी मधुबन बेहद यज्ञ में अपनी विशेष सेवाएं बाबा का जो ज्ञानामृत मंथली मैगजीन है उसमें आप संयुक्त संपादक रूप में दे रहे हैं। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतियों तथा नेपाल में भी ईश्वरीय सेवाएं की है। आपने अनेक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी अनेक विषयों पर संबोधित भी किया है। और अभी आज हमारे लिए बाबा ने परसों जो हमारे लिए सुनाया है, आत्मा रूपी दीपक में एकरस अवस्था कैसे रहे, इस पर आपने जो विचार किया है, मंथन किया है, अभी हमारे साथ आपका विशेष बाबा का ध्यान रतन हमारे साथ अभी शेयर करेगी। तो हम उर्मिला बहन जी को बहुत प्यार से स्वागत करेंगे। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। और सभी भाई बहनों के लिए विशेष एक सूचना है, कृपया कोई भी दादी जी कॉटेज के पास कोई भी किसी कारण से नहीं जावे, क्योंकि दादी अभी आप सभी जानते हैं 3 बार हमें सीजन में बाबा के शाम के टाइम पर, बाबा के मिलने के टाइम पर यहाँ सबके साथ मिली है। इसलिए कॉटेज के पास कोई भी भाई बहने नहीं जाना है। ओम शांति,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की प्यारी प्यारी मुरली हम सभी ने सुनी और बाबा ने हम चेतन दीपकों को बहुत बहलाया भी और हमारी रोशनी को बढ़ाया भी, ताकि हम दुनिया के अंधकार को दूर करें। वैसे भी मानव जीवन की तुलना दीपक के साथ भक्ति मार्ग में भी की जाती है। जैसे चिंतक लोग कहते हैं कि शरीर मिट्टी का बना हुआ है, तो सचमुच शरीर तो मिट्टी का ही बना हुआ है। और जब दिवाली आती है तो जो बाजार से हम दीपक खरीदते हैं वो भी मिट्टी का ही बना हुआ होता है। आजकल तो उसको डेकोरेट कर देते हैं, लेकिन पहले तो जब दिवाली आती थी तो बर्तन बनाने वाले लोग फ्री दे के जाया करते थे। आजकल उसकी कीमत हो गई है 10 पैसा 25 पैसा ऐसे। उसके बाद उसे हम घर में लाते हैं, थोड़ा धुलाई करते हैं, तेल डालते हैं, बाती डालते हैं, तब तक भी उसकी कोई ज्यादा कीमत नहीं होती। लेकिन जैसे ही उस बाती को जला दिया जाता है तो वो 2 पैसे का दिया भी कितना मूल्यवान हो जाता है। उसको मंदिर में रखेंगे तो बड़े से बड़ा धनवान, बलवान, गुणवान वो भी उसके आगे सिर झुकाएगा, कोई उससे वरदान मांगेगा, कोई उसके ऊपर पैसे चढ़ाएगा, कोई उसके सामने प्रतिज्ञा करेगा। तो जैसे ही बाती जली, रोशनी आई, वो 2-4 पैसे का दीपक अरबों खरबों से भी ज्यादा मूल्यवान हो गया। तो इसी की भेंट में ये शरीर भी उस मिट्टी के दीपक जैसा ही है, लेकिन जब इसमें आत्मा आ जाती है तो इसकी थोड़ी मूल्य बढ़ जाती है। लेकिन जब उस आत्मा में ज्ञान आ जाता है तो वही कोड़ी तुल्य आत्मा हीरे तुल्य बन जाती है। और उस ज्ञानी आत्मा को लोग मस्तक झुकाते हैं, उससे भी वरदान मांगते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करने की कामना करते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि आपके भक्त आपको दीप राजे के रूप में देख रहे हैं। तो इतनी कीमत है ज्ञान की, रोशनी की, जो बाबा हमें देते हैं। मुझे कहानी छोटी सी याद आ रही है। एक बार एक गांव में मंदिर बना सरस्वती मैया का, तो मंदिर तो बन गया लेकिन उसमें मूर्ति नहीं थी। तो पंचायत बैठी और चिंतन करने लगे, भाई मूर्ति कहाँ से लाएं? तो किसी ने बताया कि यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पे गांव है, वहाँ एक मूर्तिकार बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाता है और मंदिर के लिए फ्री दे देता है। लेकिन सवाल ये है, 20 किलोमीटर दूर से मूर्ति को लाएं कैसे? तो एक कुम्हार ने कहा, मेरा गधा ले लो और इसकी पीठ पे रख करके ले आना। तो अगले दिन कुछ समझदार लोग गधे को लेकर के और उस गांव में चले गए। उस मूर्तिकार ने मूर्ति उसकी पीठ पे रख दी और वो वापस गांव में आने लगे। तो गांव के लोगों को पता पड़ा कि भाई गांव की सीमा पे मूर्ति पहुंच गई है। तो लोग थालियों में लड्डू डाल के, दिया जला के, फूल रख के और गांव में आती हुई देवी का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हो गए। जैसे ही देवी सामने आई तो किसी की थाली में लड्डू था, उसने थोड़ा देवी के मुंह को लगाया, बाकी सारा लड्डू गधे को खिला दिया। ऐसे देवी की आरती उतारी तो थोड़ी गधे के चारों ओर भी ऐसे कर दी। देवी के गले में फूल माला डाली तो एक माला गधे के गले में भी डाल दी। उसके बाद थोड़ा आगे आए तो घरों के सामने से गली में से होते हुए मंदिर में जाना था, तो जिस जिस घर के आगे से जाते थे उस घर के लोग भी बाहर निकलते थे देवी के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करते हुए जो देवी को अर्पण करते थे साथ में थोड़ा गधे को भी खिला देते थे। किसी ने फ्रूट खिलाया, किसी ने कोई और मिठाई खिलाई, किसी ने पैसा चढ़ाया, गधे के ऊपर भी वार फेर कर दी। ऐसे करते करते मंदिर आ गया, देवी को उतार लिया गया, मंदिर में स्थापित हो गई और गधे को उसका मालिक ले गया। अगले दिन जब वही टाइम हुआ, 10-1 बजे का टाइम था, तो गधे को याद आया कि कल मुझे बहुत लड्डू खाने को मिले थे और लोगों ने मेरी आरती उतारी थी और मेरे गले में माला डाली थी, तो मैं एक राउंड आज भी लगा आता हूँ। तो उसके पांव में जो था वो उसने निकाल दिया और राउंड लगाने गया। तो जब पहले घर के सामने गया तो उसने आवाज लगाई जैसा वो लगाता है, तो जो महिला थी काम कर रही थी, देखा सामने ये शोर मचा रहा है तो गुस्सा आया, लाठी उठा के लाई। अब वो तो सावधान था नहीं, वो तो देख रहा था लड्डू आया कि आया, लड्डू आया कि आया। लेकिन उस महिला ने जब उसकी पिटाई की तो उसको बड़ा दुख हुआ कि दुनिया के लोग तो एक रात में ही बदल जाते हैं। कल कितने अच्छे थे और एक रात में इनको क्या हो गया। फिर सोचा चलो अगले घर में ट्राई करता हूँ, अगले घर में भी वही हाल हुआ, इसलिए अगले घर में भी वही हाल हुआ। तो उसको लगा रात रात में चमत्कार क्या हो गया। वापस आया अपनी जगह पे, रो रहा था तो उसकी बाजू में एक घोड़ा बंधा हुआ था। उसने कहा, भाई क्या हुआ, कल तो तू बहुत खुश था, आज क्या हो गया? उसने कहा, मैं तो लोगों की बदलती हुई चाल देख के रो रहा हूँ। तो सारी कहानी सुनाई घोड़े को। घोड़े ने कहा, देख भाई, कल जो तेरे को लड्डू मिले, तेरी आरती उतारी, वो इसलिए कि तेरी पीठ पे एक ज्ञान की देवी बैठी थी। तो जब तेरी पीठ पे ज्ञान की देवी होगी तो तेरा सम्मान होगा, और जब ज्ञान की देवी उतर जाएगी तब भला तेरा सम्मान क्यों होगा, सम्मान तो ज्ञान का है। तो ये जो दीपक में बाती है ये ज्ञान की बाती है। जब ये ज्ञान की बाती जगमगाती है, सबको रोशनी देती है, तो इस दीपक का भी मान हो जाता है। इस शरीर को भी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। जब तक ज्ञान की ज्योति है तब तक इस दिए के आगे भी लोग सिर झुकाते हैं। अब या तो ज्ञान ना हो तो भी कदर नहीं, और अगर ज्ञान है लेकिन ज्योति शरीर से निकल गई तो ज्योति विहीन शरीर की भी कोई कदर नहीं। इसलिए हम देखते हैं कि दिवाली का दिया रात भर रोशनी देता है और सुबह जैसे ही उसकी ज्योति बुझ जाती है हम उसे उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। जो सबको वरदान दे रहा था, रोशनी दे रहा था, ज्योति जाते ही उसकी क्या कीमत रह गई। और इसी तरह इस शरीर की भी आत्मा के निकल जाने के बाद इसकी कोई कीमत नहीं। तो वास्तव में जब ज्ञान है, योग है, गुणों का बल है, शक्तियों का बल है, तो मानव का जीवन अमूल्य है। और वही इस चेतन दीपक की शिखा है, ज्योति है। लेकिन जैसे दिया जलता है तो बाहर के झोंके आते हैं, तूफान आते हैं, हिलाते हैं लोगों को, बुझा भी देते हैं। तो ऐसे ही हम एक रस रहें, उसमें भी कई तरह के तूफान आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं। और देखने में आता है कि दो प्रकार के विघ्न या बाधाएं हैं, एक तो बाहर से आती हैं और दूसरा जैसे दिए के अंदर तेल ही खुट जाए तो भी ज्योति जलेगी कैसे। तो एक अंदर से जब ज्ञानियों की गुणों की कमी हो जाती है तो भी ये एक रस नहीं रह पाती, और जब बाहर के तूफान आते हैं तो भी एक रस नहीं रह पाती। लेकिन हम सबका ये भी अनुभव है कि अगर हम अंदर से मजबूत हैं तो बाहर से चाहे कितने भी विघ्न आए, हमारी अंदर की मजबूती बाहर के विघ्नों को सहन भी कर लेती है, सामना भी कर लेती है। इसलिए प्यारे बाबा हम बच्चों को बार बार इस बात का ध्यान खिंचवाते हैं कि अलबेले नहीं बनो, ज्ञान गुण शक्तियों में खजानों में सदा भरपूर रहो और इन सबको यूज करो। तो जो बाबा ज्ञान देते हैं वो ज्ञान है ही इस दीपक की लो की रोशनी को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए। भक्ति मार्ग में भी बहुत गुरुओं ने, संतों ने इस प्रकार का ज्ञान दिया। जैसे महात्मा बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा कि भई हम संसार में रहते हुए कर्म कैसे करें, सब प्रकार के कर्म, जीवन उपयोगी कर्म कैसे करें, उपभोग कैसे करें। तो उसने कहा उसके लिए तीन शब्द याद रखो। उसने कहा एक शब्द अल्प, दूसरा है सुलभ और तीसरा है निर्मल। संसार में रहते हुए कम से कम चीजों का उपभोग करो, अल्प, जितने कम से कम में आपका काम चल जाए, जिसके बिना काम चल जाए उसका उपभोग मत करो, आप बहुत सुखी रहेंगे। और दूसरा का सुलभ, जो चीज सहज मिल जाए, बिना मेहनत के, बिना किसी का दिल दुखाए, बिना खींचतान किए, बिना अपना समय शक्ति नष्ट किए, बिना अपनी बुद्धि को उलझाए, जो आपको सहजता से चीज मिल जाए उसका उपभोग करो। इसलिए हम भी सुनते हैं सहज मिले सो दूध बराबर, जो चीज इजीली मिल जाती है वो दूध बराबर है। और तीसरा उसने कहा निर्मल, जिस भी चीज का आप उपभोग करें वो निर्मल होनी चाहिए, राइटियस वे में मिलनी चाहिए, झूठ बोल के, धोखा करके, गलत काम करके, गलत तरीके से जो चीज आएगी वो आपको सुख नहीं देगी। तो प्यारे बाबा ने भी हम बच्चों को ये नियम समझाए। संसार में रहते हुए बाबा कहते हैं दो चीजों का त्याग सबसे बड़ा त्याग है, एक है मान शान का त्याग और दूसरा साधनों का त्याग। कम से कम साधनों में हम अपना जीवन चलाएं। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि पूर्व और पश्चिम की संस्कृति में एक गहरी खाई है दोनों के बीच में। पूर्व की संस्कृति कहती है कि देखें जीवन में हम कितना कम से कम यूज कर सकते हैं, और पश्चिम की संस्कृति कहती है देखें हम कितना अधिक से अधिक भोग सकते हैं। तो ये त्याग की संस्कृति है और वो भोग की संस्कृति है। तो दिए की लो को कौन हिलाता है? ये भोगवादी संस्कृति, इच्छाएं। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ये भी सिखाया कि जितनी इच्छाएं कम होंगी समस्याएं उतनी ही कम होंगी, इच्छाएं बढ़ेंगी तो समस्याएं भी बढ़ेंगी। तो एक सूत्र तो ये है कि हम केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करें, आवश्यकताएं आविष्कार की जननी है। कई लोग कहते हैं कि इच्छाएं नहीं होंगी तो विकास कैसे होगा। वास्तव में इच्छाएं तो पतन की तरफ ले जाती हैं, और जिसे हम कहते हैं आविष्कार उसका साधन व्यक्ति की आवश्यकता है, और आवश्यकताएं बहुत कम होती हैं, इच्छाएं तो अनलिमिटेड। आचार्य महाप्रज्ञ ने भी अपनी एक बुक में लिखा है कि दुनिया में हर चीज की लंबाई चौड़ाई है लेकिन इच्छाओं की कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। आज अगर वो 1 मीटर लंबी है तो कल 10 मिलेगी, परसों 50 मिलेगी, अर्थात बढ़ते बढ़ते अनलिमिटेड हो जाएगी। अब इच्छा तो अनलिमिटेड हो गई लेकिन व्यक्ति की शक्ति तो अनलिमिटेड नहीं है। अब वो लिमिटेड शक्ति से अनलिमिटेड इच्छाओं को कैसे पूरी करेगा? इसलिए वो तनाव पैदा करती हैं, उलझने पैदा करती हैं। तो एक तो साधना बढ़े, त्याग बढ़े, तपस्या बढ़े, सादगी बढ़े, लेकिन हमारी इच्छाएं ना बढ़े, मानशान की कामना। दूसरा, जैसे बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि आप जो भी कर्म करते हैं तो मालिक बनकर के कर्म करें। होता क्या है कि जो कर्म रूपी घोड़ा है उसके ऊपर हम सवार तो हो जाते हैं, और अगर लगाम ढीली है अर्थात कर्म हमारे वश में नहीं है तो दो प्रकार के कर्म हो जाते हैं, या तो विक्रम हो जाते हैं, और अगर सुकर्म भी होते हैं और कर्म की लगाम हमारे हाथ में नहीं है तो उसके भी दो परिणाम निकलते हैं। अच्छे कर्म सुकर्म में भी या तो व्यक्ति को अहंकार आ जाता है या आसक्ति आ जाती है, मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूँ। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था कि महानता के भी मालिक मत बनो, महानता के भी ट्रस्टी बनो, क्योंकि आपको जो महानता मिली वो कहाँ से आई? बाबा ने आपको दी, तो उस महानता के लिए आपको अभिमान न आए, देने वाले का शुक्रिया जो उसने महानता दी या मुझे महान बनाया, कोड़ी तुल्य आत्मा को उठा करके हीरे तुल्य बनाया, तो ये बाबा की दी हुई महानता है, इसके लिए बाबा को थैंक्स। अगर ये भाव नहीं होगा तो अच्छा कर्म करके ईगो आएगा, और जब अंदर ईगो होगा तो कहते हैं ईगो होगा तो हर्ट भी जरूर होगा। कई बार हम कहते हैं देखो फलाने ने ऐसी बात कही मुझे चोट लगी, अंदर अहंकार था ना, हम अकड़ के रहे, हमने अपने आप को कुछ समझा तो सामने वाले की बात हमको चुभ गई, अंदर अहंकार का बीज पड़ा था, सामने वाले ने 2-4 अपमान के छींटे डाले तो वो छींटे पड़ते ही जो अंदर बीज था वो अंकुरित हो गया। अगर वो बीज अंदर होता ही नहीं तो कितने भी पानी गिरे, कितने भी छींटे पड़े, भला अंकुरित क्या होता, बीज ही नहीं था तो हमें महसूसता भी नहीं आती। और दूसरा, आसक्ति आ जाती है, मैं करता हूँ, मेरे से ही ये काम हो सकता है, मेरे सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता, ये मेरा है, ये मैं ही करूँगा। इसलिए कर्म की लगाम हाथ में रखें, कर्म के मालिक बन के रहें, कर्म हमें खींच के ना ले जाए लेकिन हम कर्म को वश में रखें, कर्म करें, और उस कर्म को करने के बाद मन स्थिति को उससे डिटैच कर लें। फिर बाबा ये भी सिखाते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रही हैं जिस दुनिया में बहुत प्रतिकूल वातावरण है, सब लोग हमारी अच्छाई को अप्रिशिएट करें ऐसा नहीं होगा, तो जब हम देखते हैं कि हम तो अच्छी बात कहते हैं, अच्छा काम करते हैं और सामने वाला बिना बात हमारा विरोध करता है, तो भी दिए किलो थोड़ी डगमगाती है, हिलती है। अरे मैं बुरा काम थोड़े कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ ना, फिर भी तुम मुझे कोऑपरेट नहीं करते, फिर भी तुम विघन डालते हो। तब मन में आता है कि ये कैसे लोग। इसके लिए भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बातें बताई हैं। जब बाबा साकार में थे तब किसी ने बाबा के सामने ऐसी शिकायत की थी, तब बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी। बाबा ने कहा, बच्चे देखो, छोटी सी एक अगरबत्ती होती है और उसे आप कूड़े के ढेर के ऊपर लगा दो, तो वो छोटी सी पतली दुबली अगरबत्ती कूड़े के ढेर ने जितनी भी बदबू फैलाई हो उसको ढक देती है और अपनी खुशबू फैला देती है। तो बाबा ने उसको कहा था कि वो दुबली पतली इतना बड़ा काम कर देती है, तुम तो 6 फुट के हो, तो क्या तुम अगरबत्ती जितना भी काम नहीं कर सकते हो? अगरबत्ती से सीखो। इसलिए दुनिया में कितनी भी बुराई हो, कितना भी विपरीत वातावरण हो, कैसे भी लोग हो, तो बाबा ने कहा आप बच्चों को अगरबत्ती की तरह खुशबू देनी है, आपकी खुशबू डेफिनेटली ज्यादा होगी, दुनिया की बदबू पे भारी पड़ेगी। हमारा एक गीत भी है ना, ये कहानी है दिए की और तूफान की, तो दिया छोटा सा और तूफान कितना भारी, लेकिन फिर भी वो तूफान दिए को बुझा नहीं सकता, क्योंकि दिए को ताकत सर्वशक्तिवान की मिल रही थी। तो ऐसे ही जब हम सर्वशक्तिवान के बच्चे बन करके उस बात को साक्षी होके देखते हैं, तो वो बात छोटी पड़ जाती है और हम बड़े हो जाते हैं। कई बार हम ऐसा भी कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने तो अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन फिर भी मैं जो चाहता था वो परिणाम नहीं निकला, और फिर भी सामने वाले व्यक्ति से मैं हार गया, सामने वाले व्यक्ति ने मुझे दिल शिकस्त कर दिया, तो इसके ऊपर भी मैं सामने वाले को नहीं बदल सका, मैं क्या करूं? तो इसके ऊपर भी हम देखते हैं कि ये जो हमारे चारों ओर प्रकृति है, हम कई बार गेहूं सुखाने के लिए रखते हैं, हम तो अच्छा ही काम कर रहे थे, और अचानक हम देखते हैं कि बादल घिर आते हैं, तो हम क्या करते हैं? इतनी मेहनत से हमने गेहूं सूखनी रखी और फिर मेहनत करके सारी को समेटते हैं। हम ये तो नहीं कहते ना कि भाई मैं क्या करूं, बादल आ गया, बरसात आ गई, गेहूं भीग गया, मेरा वश नहीं चला। नहीं, हम अपना वश चलाते हैं, बरसात से अपनी चीज को बचाते हैं। ऐसी चाहे हम कितने भी नेगेटिव लोगों के बीच में, झूठे हैं, क्रोधी हैं, ईर्ष्यालु हैं, नफरत करते हैं, धोखा करते हैं, और भी सब तरह के उनमें विकार हैं, तो हम ये थोड़े कह सकते हैं भाई मैं क्या करूं, वो सामने वाले व्यक्ति में क्रोधी ऐसा था तो मैं अपने को बचा नहीं सका, उसमें ईर्ष्या ही ऐसी थी मैंने भी बदले में ईर्ष्या कर ली, उसमें नफरत ऐसी थी मैंने भी बदले में नफरत कर ली, मैं अपने को बचा ही नहीं सका। नहीं, जैसे बरसात आई तो हमने गेहूं समेटे कि नहीं समेटे? तो जैसे हम इस प्रकृति को देख करके अपने आप को बदल लेते हैं, ऐसे ही मनुष्य की भी प्रकृति, मनुष्य का भी स्वभाव है। अगर उसका स्वभाव नेगेटिव है तो हम क्या करें? हम अपने पॉजिटिव स्वभाव को बचा करके रखें, सेफ रखें, कुछ भी करें, चाहे सामने से हटें, चाहे कोई और बाबा ने जो युक्तियां बताई हैं उनको अपनाएं, लेकिन कभी ये न कहें कि मैं क्या करूं, उसकी नेगेटिविटी का प्रभाव मेरे ऊपर आ गया। अभी ठंड आ रही है तो देखो कितनी तेज ठंडी होगी, हम ये थोड़े कहेंगे जी हम क्या करें, ठंडी हवाएं चल रही थी, हमको ठंडी लग गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई। नहीं, जितनी ज्यादा ठंडी हवा चलेगी उतने ज्यादा हम गर्म कपड़े पहनेंगे। हमारे मन में क्या होता है? हमारे मन में ये भावना होती है कि ठंड बढ़ेगी तो हम अपनी सेफ्टी बढ़ाएंगे, हम ठंड के अधीन थोड़े होंगे। तो ऐसी ही दुनिया में नेगेटिविटी बढ़ेगी तो हम अपनी सेफ्टी बढ़ाएंगे, हम ये थोड़े कहेंगे हम क्या करें नेगेटिविटी बढ़ गई, हम क्या करें, लोग ऐसे हैं, हम क्या करें, वातावरण ऐसा है, हम क्या करें, शरीर बूढ़ा हो गया है, हम क्या करें, हमसे चला नहीं जाता, ये नहीं होता, उम्र भी बढ़ेगी, बुढ़ापा भी आएगा, बीमारी भी आएगी। लेकिन जितनी जितनी परिस्थितियां आएंगे उतना उतना हम अपनी सेफ्टी को बढ़ाएंगे, हम अपने अंदर के बल को बढ़ाएंगे और उसका सामना करेंगे। तो जब हमारी ये थिंकिंग होगी तो आत्मा रूपी ज्योति निरंतर जगमगाएगी और दूसरों को भी रोशनी देगी। बाबा ने इसी काम के लिए हम बच्चों को निमित्त बनाया। हम देखते हैं कि दुनिया में लोगों को कितनी कितनी चिंताएं हैं। एक चिंता खत्म नहीं होती, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, चिंता में घुलते रहते हैं, ना नींद आती है, ना ठीक से खा पाती। और बाबा ने हम बच्चों को इन सब बातों से छुड़ा दिया। क्यों छुड़ाया? बाबा ने इसलिए छुड़ाया कि आपकी जो शक्ति बचेगी उससे आप दूसरों की सेवा करेंगे। तो हम बाबा की इतनी पालना लेते हैं, इतना प्यार पाते हैं, इतनी शक्ति पाते हैं, और इतना सब कुछ पाने के बाद भी अगर हम ये कहें कि जी हम क्या करें, हम तो डगमगा जाते हैं, हिल जाते हैं, तो बाबा की पालना का रिटर्न कब देंगे? इसलिए बाबा की पालना का रिटर्न अपने आप को टर्न करना, अर्थात अपनी कमजोरियों को टर्न करना, अपने आप को मजबूत बनाना। और हम ये भी देखते हैं कि वास्तव में जिसे हम विघ्न कहते हैं, बुराई कहते हैं, बाधा कहते हैं, जो चीज हमें हिलाने आती है, हमारी परीक्षा लेने आती है, डिगाने के लिए आती है, वो वास्तव में हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम गहराई से ध्यान दें तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे माया भी और प्रकृति भी दोनों मिलकर के आपको संपूर्ण बनाती है। ये दोनों संपूर्ण बनाने का साधन है, अगर माया ना आए तो मेरे बच्चे अलबेले हो जाए। इसलिए बाबा ने ये भी कहा था, माया मेरी बेटी है, इसे मैं बच्चों के पास भेजता हूँ। तो जब माया आए तो क्यों ना हम ये समझें कि ये बाबा की भेजी हुई है, हमें इसका स्वागत करना, हमको डरना नहीं है। अगर हम बाबा के शब्दों को याद रखें, ये हमें मजबूत बनाने आई है, हमको डरना नहीं है लेकिन हमें मजबूत बनना है। मुझे याद है मैं एक बार एक ट्रेन में सफर कर रही थी तो एक महिला का बच्चा था, वो उसके बाजू में बैठा था पर बहुत शरारती था, और ठंडी के दिन थे, वो उसे कपड़ा उड़ाती थी और वो फिर भाग जाता था, फिर खिड़की की तरफ जाता था, ठंडी हवा आती थी और माँ को डर लगता था कि ये बीमार पड़ जाएगा, तो बार बार उसे कपड़ा उड़ाए और वो बच्चा बार बार कपड़ा फेंक दे, माँ परेशान हो गई। तो उसको एक युक्ति सूझी, एक बाजू में बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था जो बहुत ही दाढ़ी मूछ वाला डरावना सा था, तो उसने धीरे से उसको कहा कि जब ये मेरा बच्चा मेरी बात नहीं माने ना तो आप इसको डरा देना। तो जब बच्चा ऐसे भागा तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उसको थोड़ा जोर से बोला, अगर तुम जाएगा ना मैं तेरे को पकड़ करके ट्रेन से नीचे फेंक दूंगा। तो बच्चा डर गया और डर करके आकर के माँ के पास इतना शांति से बैठ गया, उसने कपड़ा भी ओढ़ लिया और उसके बाद वो वहां से हिला नहीं। तो महिला खुश हो गई, शुक्र है मेरी युक्ति काम कर गई। तो हम देखते हैं कि जब हम बाबा की बात को नहीं मानते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, थोड़े अलबेले होते हैं, मनमत पे चलते हैं, तो माया क्या करती है, एक बार थोड़ी सी घुड़की देती है, थोड़ी आंख दिखाती है। और जैसे ही माया आंख दिखाती है तो हम क्या करते हैं, वापस दौड़ के बाबा की गोदी में छिप जाते हैं, बाबा 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 बचाओ। तो बाबा तो चाहता ही यही था कि माया जरा आंख दिखाए और बच्चा वापस मेरे पास आए, क्योंकि मेरी गोद में से निकल के गया था। इसलिए सेफ्टी का साधन है कि हम बाबा की गोद में रहें। बाबा कहते हैं दुनिया तेज धूप है और बाबा की गोदी शीतल छाया है, उसको छोड़ेंगे तो माया आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये सारा राज्य उसका और वो घूम रही है गुप्त वेश में भी और प्रकट रूप में भी। तो जैसे ही थोड़ी सी भी अपन मर्यादा की लकीर से पांव बाहर निकालते हैं वो तो मुक्ति की तलाश में रहती है। इसलिए हमें बाबा की गोदी में रहना है, सुरक्षित रहना है और बाबा की छत्र छाया में रहना है। इसलिए बाबा हम बच्चों को बार बार बड़ी मीठी मीठी बातें सुनाते, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और अपने प्यार का विश्वास दिलाते हैं। मैं तुम बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे दिल में एक एक बच्चा है, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बाबा के दिल में ना हो। हमें बार बार विश्वास आए क्योंकि दुनिया में लोगों ने हमारे विश्वास को तोड़ा। किसी ने कहा तुम अच्छे नहीं हो, किसी ने कहा हम तुमको लाइक नहीं करते, किसी ने कहा हमारा तुमसे प्रेम नहीं है, किसी ने कहा तुम तो किसी योग्य नहीं हो, किसी ने कहा हमारा तुमसे कनेक्शन नहीं है, किसी ने कहा हम तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। तो दुनिया में जो नजदीकी लोग थे उन्होंने भी इस तरह की बातें कह कह करके हमारे विश्वास को तोड़ दिया। किसी ने दिलचस्प किया, किसी ने दूरियां बना ली, किसी ने ग्लानी की, किसी ने हमारे अवगुण देखे तो आत्मबल कम हो गया, हमको लगा हम तो अकेले, हमारा कोई नहीं। लेकिन बाबा ने मुरली की एक एक लाइन में और एक एक मुरली में कितनी कितनी बार हमको विश्वास दिलाया। क्या विश्वास दिलाया? मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, मुझे आपसे बहुत प्यार है, आप मेरे दिल में रहते हो। बाबा भी आप बच्चों के बिना रह नहीं सकता है, इसलिए बाबा आप बच्चों से मिलने आता है, रह नहीं सकता है। तो देखो एक एक शब्द में माया ने जो चीज हमसे छीनी, बाबा वो सारी चीजें हमें वापस लौटा रही है। इसलिए बाबा की एक एक लाइन में बहुत बल है, एक एक लाइन हमारे लिए वरदान है और एक एक लाइन से हमें बहुत आत्म बल मिलता है, विश्वास मिलता है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है और माया को जीतने का एक एक हथियार है। इसलिए बाबा का एक एक महावाक्य कितनी कीमत का है, कितनी कीमत बताएं, अरबों खरबों इससे भी अमूल्य। और इतने अरबों खरबों की चीज हर दिन हमें बाबा से मिलती है, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। हर दिन हमें अपने भाग्य का गुणगान करना है, हर दिन हमें अपने भाग्य को देख करके हर्षित होना है, अपना भाग्य भी और अपने भाई बहनों का भाग्य भी, अपने परिवार का भाग्य भी। हम कितने महान परिवार के भाती दुनिया में आप देखेंगे, अगर किसी के परिवार में कोई आईएएस हो या कोई स्वतंत्रता सेनानी हो तो उसको बड़ा नशा होता है, वो बताएगा कि मेरा अमुक रिश्तेदार आईएएस ऑफिसर है, मेरे परिवार का एक व्यक्ति बहुत बड़ा स्वतंत्रता सेनानी था, उसे नशा चढ़ता है, मैं ऐसे कुल का। तो ऐसे ही हम बच्चे भी देखें कि हमारे परिवार में एक एक आत्मा पूजनीय है, सब सत्कार मुहूर्त है, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, इष्ट और अष्ट है, जितने भी मंदिर बने हुए हैं सब हमारे परिवार के भातियों के बने हुए हैं। तो जब हम उस नजर से देखते हैं कि इतना ऊंचा बाबा हमें मिला और इतना ऊंचा परिवार हमें मिला और इस परिवार की एक एक आत्मा कितनी गुणवान महान वरदानी मूर्त है तो हमारी खुशी बढ़ती है, हमें नशा चढ़ता है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि फिकर बाबा को दे दो और बदले में फखुर ले लो, फखुर अर्थात नशा, रूहानी नशा ले लो। तो जितना हम रूहानी नशे में रहते हैं, जितना हम स्वमान में रहते हैं, उतनी इस दिए की रोशनी एक रस रहती है, ये जगमगाती रहती है। और एक मुरली में बाबा ने ये भी कहा था कि कई बार बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं, खुद दूसरों को देख करके मन में विचार कर लेते हैं कि बड़ों को ऐसे करना चाहिए, छोटे को ऐसा करना चाहिए, अमुक बाबा के बच्चे को ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसे करना चाहिए। तो बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि दो प्रकार के बच्चे हैं, एक बच्चे तो कहते हैं ये होना चाहिए ये होना चाहिए, और दूसरे बच्चे कहते हैं मुझे ये करना ही है। तो बाबा ने कहा जो है करते हैं वो हाय हाय करने से छूट जाते हैं, और जो चाहिए चाहिए करते हैं वो बच्चे बंधन में आ जाते हैं। तुम बच्चों को दूसरों को देख करके कभी ये नहीं सोचना कि इसको बदलना चाहिए, इसको ये करना चाहिए, लेकिन अपने लिए ये सोचना है कि मुझे ये करना है, करना ही है। तो जब हम है का ठप्पा लगाएंगे तो जीवन में कभी हाय हाय नहीं करनी पड़ेगी। इस पे भी मुझे एक छोटी सी बात याद आती है, बच्चों को सिखाने के लिए कहानी सुनाती है कि एक बार एक बहुत बड़ा खेत था तो उसमें एक पक्षी अपने परिवार के साथ रहता था। तो एक दिन खेत का मालिक आया, उसने देखा खेत तो पक गया, तो उसने अपने कर्मचारियों को कहा, भाई देखो एक हफ्ते के अंदर ये खेत कट जाना चाहिए, पक गया है। तो पक्षी के बच्चों ने जब ये बात सुनी तो वो डर गए कि अभी तुमको यहाँ से भागना पड़ेगा। बच्चों ने अपना डर अपनी माँ को सुनाया तो माँ कहती है, नहीं खेत एक हफ्ते में नहीं कटेगा। बोला क्यों? बोला ये किसान कहता है कट जाना चाहिए, जो चाहिए चाहिए करता है ना, उसका काम कभी भी नहीं होता। तो एक हफ्ते के बाद सचमुच कुछ भी नहीं हुआ और वो किसान हफ्ते बाद आया, उसने देखा खेत तो खड़ा हुआ। फिर वो चिल्लाने लगा, सारे कर्मचारियों को इकट्ठा किया, मैंने कहा था ना हो जाना चाहिए, हुआ क्यों नहीं? फिर तुमको चेतावनी देता हूँ, एक हफ्ते में ये काम हो जाना चाहिए। और बच्चे फिर डर गए और माँ को कहा, माने का नहीं नहीं जब ये चाहिए चाहिए कहता है ना, डरो नहीं, अभी भी कुछ नहीं होने वाला। सचमुच कुछ भी नहीं हुआ। एक हफ्ते बाद वो फिर आया, इस बार उसने देखा, उसने कहा मेरे को खेत काटना ही है, मुझे ला करके 2000, मैं शुरुआत करता हूँ। और ऐसे कह के उसने वो जो काटने की चीजें होती हैं वो अपने हाथ में ली और काटना शुरू किया। तो उसको देख के सारे कर्मचारी लग गए। तो माँ ने कहा, चलो बच्चों अब हम खेत को छोड़ के चलते हैं, क्योंकि अब इसकी भाषा बदल गई। अब तक ये कहता था कटना चाहिए, अब कहता है मुझे काटना ही है। तो बाबा ने भी एक मुरली में कहा था कि बच्चों को ये दृढ़ संकल्प करना है कि मुझे करना ही है, मैं करूंगा तो कार्य होगा, और मैं करूंगा तो मुझे देख करके और करेंगे। तो हम बाबा के बच्चों को अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए हर बात में शुरुआत खुद करनी है, खुद को बदलना है, दृढ़ संकल्प खुद को करना है, तो हमें सफलता मिलेगी और हम बिना तनाव के कार्यों को सफल कर पाएंगे। हम देखते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। किसी चिंतक ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन की रोज की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए, अर्थात रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी करने के लिए व्यक्ति को केवल 1% शक्ति की जरूरत होती है। उसके भीतर जो 100% शक्ति है ना, उसमें से केवल 1% शक्ति को यूज करके वो रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी कर सकता है, और उसकी जो 99% शक्ति है वो दबी की दबी रह जाती है। तो दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तरह के लोग कौन है? एक तरह के लोग वो हैं जो इस दुनिया में जो भी कुछ है उसको देख करके बहुत भ्रमित होते हैं, चकाचौंध होते हैं। वो सोचते हैं ये चीज बहुत अच्छी है, इसको भी मैं ले लूं, ये भी बहुत अच्छी है, ये भी मेरे पास होनी चाहिए, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी मुझे मिल जाए। इंद्रियों से वो जो जो चीज देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उस पर आकर्षित हो जाते हैं, उसे लेने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो दुनिया की चीजों को देख के सोचते हैं कि ये चीज इस दुनिया में आई कहाँ से, किसी ने तो बनाई होगी, बनाने वाला कौन था, वो भी तो कोई मनुष्य था ना, तो अगर वो बना सकता है तो क्या मैं कोई बढ़िया चीज नहीं बना सकता? अगर उसके अंदर से ही इतनी अच्छी चीज निकल सकती है तो मेरे भीतर भी तो बहुत कुछ होगा ना, तो क्यों नहीं मैं भी अपने अंदर से कोई नई चीज निकालूं और दुनिया को दे करके जाऊं। तो वो लोग अपनी शक्ति को बाहर निकालते हैं, पहले उसको अंदर झिंझोड़ते हैं और फिर बाहर निकालते हैं। तो ऐसे लोग इंद्रियों से संसार की चीजें लेने के बजाय अपने भीतर जो कुछ है वो दुनिया को दे के जाते हैं। अब हम दोनों में से कौन बनना चाहते हैं? जो कुछ ऑलरेडी है उसे इंद्रियों से भोगने में लगे रहें, या जो हमारे भीतर गुप्त खजाने पड़े हैं उन खजानों को जागृत करके उसे दुनिया को देने में लगे। दोनों में से कौन सा काम करे? जो गुप्त खजाने हैं वो हम दुनिया को दें। तो जो देता है वो भरपूर रहता है, और जो लेता है वो जितना मर्जी ले ले फिर भी खाली का खाली रहता है। तो बाबा ने हम बच्चों को आप समान दाता बनाया, इसलिए हम अपनी शक्तियों को रोज के जीवन में तो थोड़ी ही शक्तियां काम आती हैं, बाकी जिन्हें हम यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें हम यूज करें। हमारे भीतर बहुत कुछ है लेकिन वो यूज कब होता है, वो बाहर कब निकलता है? देखो बीज के भीतर बहुत कुछ है, एक छोटे से बीज में वट वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन उस बीज में से वो वट का पेड़ निकलता कब है? जब वो जमीन के अंदर चला जाता है, बाहरी संसार को ना देखता है, ना बाहरी संसार से कनेक्ट रहता है, ना बाहरी संसार से कोई कामना रखता है, अंदर चला जाता है और बाहर की दुनिया से कुछ लेने के बजाय फूट करके अपने भीतर की चीज को बाहर निकालता है। और जब बाहर निकालता है तो वो इतना निकलता है कि वट वृक्ष बन जाता है। तो इसी तरह से हम आत्माएं जब इस बाह्य जगत को देखती हैं, सुनती हैं, इससे कनेक्ट रहती हैं, तो जो थी वही बनी रहती है, हमारी भीतर जो शक्ति भरी वो फूट करके बाहर नहीं निकलती। और अगर हम अंतर्मुखी हो जाएं, इंद्रियों को बाह्य जगत से डिस्कनेक्ट कर ले, अंतर्मुखी होकर के अपनी आंतरिक शक्तियों का मनन करें, चिंतन करें, तो वो भी फूट करके बाहर निकलती हैं। और एक छोटी सी आत्मा कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है, कितने लोगों के दुख दूर कर सकती है, कितने लोगों को आत्म बल दे सकती है, कितनों को दिशा दे सकती है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे एक एक दीप में बहुत लाइट है, माइट है, और मेरा एक एक दीप कितने अनेकों को जगाने वाला है। बाबा को वो दिख रहा है, बाबा को हमारी वो दबी हुई शक्ति दिखाई देती है। हमें वो अपनी शक्ति कई बार क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि हम बाह्य जगत को देखने में बहुत व्यस्त हो जाते, तो जब बाहर का देखेंगे तो भीतर का कैसे दिखेगा? इसलिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा दी, देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। क्यों? क्योंकि अंदर की शक्ति को यूज करना है, और जितना हम बाहर को देखते हैं ना, अंदर की शक्ति यूज नहीं होती बल्कि बह जाती है, अक्षीण हो जाती है। तो उसको बहने से बचाने के लिए, क्षीण होने से बचाने के लिए भी हमको अंतर्मुखी बनना है। बाबा ने मुरली में कहा था कि जैसे एक वैज्ञानिक अपनी लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करता है, ऐसे आप बच्चे भी अंतर्मुखता की लैब में बैठो और अपने आप पर एक्सपेरिमेंट करो, तो आपको महसूसता आएगी। अभी तो आप सुनते हो कि हम बहुत महान है, फिर आपको महसूसता आएगी कि सचमुच मैं एक कितना कमाल कर सकता हूँ। मैं एक छोटी सी जगह पे बैठ करके भी सारी दुनिया की आत्माओं को कैसे संदेश दे सकता हूँ, कैसे उनमें बल भर सकता हूँ, उन्हें दिशा दे सकता हूँ, उनके दुख दूर कर सकता हूँ। ये हमको महसूसता आएगी कि मैं एक जगह पे रह करके हम करोड़ों आत्माओं के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रही, बातें कर रही, एक एक दुखी आत्मा के नजदीक जाकर के और जैसे उसकी आश पूरी कर रही है, सूक्ष्म रीति से अंतर्मुखता की गुफा में बैठ के हमें महसूस होगा कि ये आत्माएं हमसे दूर नहीं, हमारे बिल्कुल नजदीक, और जैसे हम उनके बिल्कुल नजदीक हैं और वो जो चाहती हैं वो हम उन्हें दे रही हैं, ये हमें महसूसता आएगी। और जैसे हम बाह्य जगत के दृश्य देखते हैं, हमें अंतर जगत में बहुत सुंदर अलौकिक दृश्य दिखाई देंगे, और जो ये अंतर जगत के अलौकिक दृश्य देखता है फिर उसको बाह्य जगत के दृश्यों में मजा नहीं आता, उसको लगता है नहीं मैं फिर अंदर जाऊं, मैं फिर वो अनुभूति करूं, मैं फिर विश्व की आत्माओं से कम्युनिकेशन करूं, उनकी इच्छाएं पूर्ण करूं, बाबा ने मुझे जो काम दिया मैं वो करूं, बार बार उसको ऐसी प्रेरणा आती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है अपने आप के साथ, बहुत मजा आता है इसमें। और कितना समय गुजर गया मालूम भी नहीं पड़ता, इसलिए हम बच्चे अपने भीतर की शक्तियों को जागृत करें, पहले अपने आप को एक रस बनाएं और फिर हमारी वो एक रस स्थिति औरों को भी प्रेरित करें। ऐसी हम पहले अपने लिए शुभकामना रखें और फिर हम सबके लिए भी ऐसी ही शुभकामना रखें। ओम शांति। Thank you.